आकाशवाणी श्रीनगर है। शिबीरू जमा से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भूटान के अपने दो रोजा सरकारी दौरे के बाद वजीर अजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के लिए वापस रवाना। लोकसभा चुनाव के पेशेनजर चुनाव अमले की तरबियत का सिलसिला जारी। पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में दिन रात काम करने वाली इलेक्शन हेल्पलाइन कायम। जबरवन पहाड़ी के दामन में वाका बाग गुलेलाला आज से आवाम के लिए खोला गया और रूस में एक कंसर्ट हॉल के अंदर मुसल्ह अफराद की फायरिंग, 80 अफराद हलाक, 150 दीगर जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर अजम नरेंद्र मोदी भूटान के अपने दो रोजा सरकारी दौरे के बाद आज नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। हवाई अड्डे पर भूटान के बादशाह जगमे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भूटान के वजीर अजम के हमरा वजीर अजम मोदी को रुखसत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर अजम मोदी ने भूटान के दौरे को बहुत खास करार दिया क्योंकि उन्हें बादशाह और भूटान के वजीर अजम स्रिंग टोबगे से मुलाकात का मौका मिला। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी बातचीत से भारत भूटान दोस्ती में मजीद सुरत आएगी। उन्होंने ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो से नवाजे जाने पर भूटान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भूटान के लोगों की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि भारत हमेशा भूटान के लिए एक काबिले एतमाद दोस्त और शराकतदार रहेगा। इससे पहले नरेंद्र मोदी और उनके भूटानी हममनसब स्रिंग टोबगे ने आज थिम्पू में एक जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह किया जो भारत सरकार की मदद से तामीर किया गया है। यह अस्पताल दो मरहलों में बनाया गया है। पहले मरहले में 22 करोड़ रुपए की लागत आई और ये 2019 से काम करता है। दूसरे मरहले की तामीर 119 करोड़ रुपए की लागत से 12वें 5 साल मनसूबे के हिस्से के तौर पर 2019 में शुरू की गई थी जो अब मुकम्मल हो चुकी है। नव तामीर शुदा अस्पताल भूटान में मां और बच्चे की सेहत की खिदमात के मयार में इजाफा करेगा। इस अस्पताल में गायनेकोलॉजी की सहूलियात समेत नवजायद बच्चों की इंतहाई निगहदाश्त के लिए जदीद तरीन सहूलियात मौजूद होंगी। आने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेशेनजर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंतखाबी अमल को शफाफ तरीके पर अंजाम देने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में 24 घंटे काम करने वाली इलेक्शन से मुतल्लिक एक हेल्पलाइन कायम की है। इंतखाबात से मुतल्लिक सवालात और खदशात को दूर करने के लिए इंतखाबी हेल्पलाइन नंबर 8899868589 पर कॉल करके इस्तफसार किया जा सकता है। आवाम इस नंबर पर 24 घंटे राबता कर सकते हैं ताकि इलेक्शन से मुतल्लिक उमूर की मालूमात या वजाहत हासिल की जा सके। इस इंतखाबी हेल्पलाइन का मकसद राय दहंदगान के लिए अपने जमहूरी हकूक का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें महफूज माहौल फराहम करना है। लोकसभा चुनाव के हवाले से मुख्तलिफ अजला में चुनाव अमले की तरबियत जारी है और इसी के साथ चुनाव मशीनों की सियासी पार्टियों के नुमाइंदों की मौजूदगी में रैंडमाइजेशन भी हो रही है। अनंतनाग जिले में आज मुलाजमीन की तरबियत दो मरहलों में 7 मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद की गई। तरबियती सेशन के दौरान मुतल्लिक अमले को अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया। ओहदेदारों को इंतखाबात के दौरान इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ कानूनी फार्मों और लिफाफों के इस्तेमाल के बारे में भी तरबियत दी गई। उधर बांडीपोरा में पार्लिमानी चुनाव के पेशेनजर जिला इलेक्शन ऑफिसर की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें मोबाइल खिदमात फराहम करने वाले अफराद शामिल थे। मीटिंग के दौरान चुनाव अमल के दौरान बिला खलल मोबाइल सर्विस को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। त्रिगाम कुपवाड़ा में भी स्वीप के तहत नौजवान वोटरों के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें पहली बार वोट देने वाले अफराद के कि एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर स्वीप के डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद तलबा और नौजवानों को चुनाव से मुतल्लिक जानकारी देने के अलावा उनकी चुनाव अमल में शिरकत के लिए हौसला अफजाई करना है। एक तारीखी फैसले के तहत भारत के चुनाव कमीशन ने जिस्मानी तौर से खास अफराद के लिए वोट फ्रॉम होम का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने पहली बार मुल्क में वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन मुतारिफ कराया है, जिसके तहत जिस्मानी तौर से खास अफराद घर में ही अपना वोट डाल सकते हैं। इस सहूलियत की फराहमी की वजह से अब वो अशखास भी अपना वोट डाल सकते हैं जो अपनी सेहत के हवाले से बाज वजूहात की बिना पर कई बार वोट डालने से महरूम रह चुके हैं। चुनाव कमीशन ने मुअम्मर अफराद और जिस्मानी तौर से खास अफराद के लिए भी कई सहूलियात मुतारिफ कराई हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हर अहल फर्द को वोट देने की जरूरत है, लिहाजा लोकसभा इलेक्शन में वोट फ्रॉम होम ऑप्शन के तहत वो अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी दौरान मुल्क में 18 से 19 साल की उम्र के लगभग 1,80,00,000 ऐसे वोटर हैं जो पहली बार लोकसभा इंतखाबात में अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करेंगे। नौजवानों और पहली बार वोट डालने वालों की हौसला अफजाई के लिए सोशल मीडिया पर वोट फॉर श्योर जैसी कई मुहिमें चलाई जा रही हैं। इस बार तकरीबन 19,74,00,000 राय दहिंदगान की उम्र 20 से 29 साल के दरमियान है। इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कमीशन को 13,00,000 से जायद एडवांस दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। पोलिंग में नौजवानों की शिरकत में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए चुनाव कमीशन टर्न आउट के निफाज के मनसूबे पर अमल कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। शहरी श्रीनगर में ढल झील और जबरवन पहाड़ियों के दरमियान वाका एशिया के सबसे बड़े बाग गुलिलाला को आज आवाम के लिए खोल दिया गया। बाग में मुख्तलिफ रंगों के फूल खिले हुए हैं। फूलबानी महकमे के मुताबिक इस साल बाग में मौजूद 68 अकसाम में 5 नए अकसाम के गुलिलाला के फूल लगाए गए हैं, जिससे बाग की रौनक में इजाफा होगा। बाग में मजीद 2,00,000 गुलिलाला के बल्ब लगाकर इसके रकबे में भी इजाफा किया गया है। 55 हेक्टेयर अराजी पर फैले बाग में 17,00,000 ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। आज पहले रोज मकामी और गैर मकामी सयाहों ने खासी तादाद में बाग गुलिलाला की सैर की। ताहम माह रमजान के पेश नजर मकामी लोगों की तादाद काफी कम रही। हुकाम ने सयाहों की सहूलियात के लिए मुअस्सर इकदाम किए थे। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने 2007 में जम्मू कश्मीर में सियाहती सीजन को आगे बढ़ाने के लिए कायम किया था। इस बाग का आगाज छोटे पैमाने पर हॉलैंड से दरामद किए गए 50,000 ट्यूलिप बल्बों से किया गया था। बाग ने फौरी तौर पर मकबूलियत हासिल की और हर साल इसकी मकबूलियत में इजाफा होता रहा। पिछले साल 3,00,000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने बाग का दौरा किया था। फिल्मों और वीडियोज की शूटिंग के तौर पर मुल्क भर से कई यूनिट्स ने गुज़िश्ता साल बाग में प्रोजेक्ट्स के कुछ हिस्से शूट किए थे, जिसकी बदौलत इसकी मकबूलियत और भी बढ़ गई। रूस में कल रात दारुल हुकूमत मास्को के करीब एक मशहूर कंसर्ट हॉल के अंदर मुसल्ले अफराद की फायरिंग से 80 से ज्यादा अफराद हलाक और 150 के करीब जख्मी हो गए हैं। हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने कबूल की है। इस हमले के बाद कॉम्प्लेक्स के छत में आग भड़क उठी। रूसी स्पेशल फोर्सेज को जाए वकूह पर तैनात किया गया है। दरी असना बैन अक्वामी सतह पर इस हमले की शदीद मजम्मत हुई है। बेशतर ममालिक के सरबराहों ने इस हमले में मारे गए अफराद के लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। अक्वामी मुत्तहिदा के सरबराह और अक्वामी मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने इस हमले की तहकीकात करने का मुतालबा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मास्को में हुए इस हमले की सख्त मजम्मत की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत इन हालात में रूस के साथ खड़ा है। आज भारत के शुहदा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का यौम शहादत मनाया जा रहा है। 1931 में आज ही के रोज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर सेंट्रल जेल में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। इस मौके पर पंजाब समेत मुल्क भर में इन शुहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے ایک اعلی سطحی میٹنگ میں جموں کشمیر میں انتظامی اصلاحات اور انسپیکشنز اینڈ ٹریننگز محکمے کے کام کاج کا تفصیلی جائزہ لیا۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری نے محکمے کے کام کاج، انتظامی معاملات، بھرتیوں کے قواعد کو حتمی شکل دینے اور پرنٹنگ سروسز کو مختلف سرکاری محکموں، نیز اداروں تک پہنچانے کے حوالے سے گزشتہ ایک سال کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ محکمے کے پاس کچھ اہم انتظامی ذمہ داریاں ہیں جن کو نبھانا ضروری ہے۔ انہوں نے مارکیٹ میں جدید رجحانات کے مطابق انتظامی سیٹ اپ اور مشینری میں تبدیلیاں کرنے پر بھی زور دیا۔ میٹنگ میں بجٹ کے اجرا اور اب تک کے اخراجات پر بھی تبادلہ خیال کرنے کے علاوہ جموں اور سری نگر کے دونوں سرکاری چھاپ خانوں کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی کا بھی نوٹس لیا۔ ایک اور میٹنگ میں چیف سیکرٹری نے محکمہ خوراک اور عموری صارفین کے کام کاج کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے جموں کشمیر میں لوگوں کے لیے اناج اور دیگر ضروری سامان کی تقسیم کاری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اٹل ڈلو نے نفسا، نان نفسا اور پی ایم ایف ڈبل ایس اسکیموں کے تحت راشن کارڈوں کی آدھار سیڈنگ کا بھی نوٹس لیا۔ جموں میں آج جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے زیر اہتمام سالسی اور سالسی کے عمل میں ریفرل ججوں کا رول کے موضوع پر ایک روزہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح ہائی کورٹ کے جج تاشی ربستان نے کیا۔ اپنے افتتاحی خطاب میں جسٹس تاشی ربستان نے کہا کہ سالسی تعاون اور اتفاقی رائے کے اصولوں کا محور ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلقات اور تعاون کو ترجیح دیتے ہوئے سالسی عدالت کی حدود سے تجاوز کرتی ہے اور تنازعات کے حل کے لیے زیادہ جامع نقطۂ نظر پیش کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سالسی فریقوں کو اپنے تنازعات تیزی سے، خوش اسلوبی سے اور اپنی شرائط پر حل کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ریفرل ججوں کو سالسی کے اصولوں اور طریقوں کی مکمل جانکاری ہونی چاہیے تاکہ تنازعات کو آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکے۔ انہوں نے تمام شریک ریفرل ججوں کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر ٹرائل ججوں پر بھی زور دیا کہ وہ ایک ایسے قانونی نظام کو فروغ دینے کے لئے سالسی کے اصولوں کو اپنائیں جو نہ صرف مؤثر اور منصفانہ ہو بلکہ ہم آہنگی کے رشتوں کو پروان چڑھانے اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں بھی مددگار ہوں۔ ادھر سپریم کورٹ کے جج جسٹس سوری کانت نے ضلع عدالتی نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، کیونکہ عوام کے سامنے عدالتی نظام کا یہی حقیقی نمائندہ ہے۔ اگرتلہ میں تریپورہ جوڈیشل اکیڈمی کے دسویں جوڈیشل کنکلیو سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس سوری کانت نے کہا کہ عدلیہ کے نظام کو ضلع کورٹ سطح پر مضبوط بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ ہائی کورٹس میں آنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دلی میں واقع سپریم کورٹ تک پورے راستے کا سفر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ عدالتی نظام ہے جو تنازعات کا پرامن حل فراہم کرتا ہے اور معاشرے میں سماجی ہم آہنگی کو بحال کرتا ہے۔ جسٹس کانت نے مزید کہا کہ فوجداری انتظامی نظام میں صرف ملزم کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ متاثرین کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متاثرین کے حقوق، ان کی شرکت اور تحفظ ایک ہی وقت میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم دو ایک جگہوں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.3 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ بھوٹان کے اپنے دو روزہ سرکاری دورے کے بعد وزیراعظم نریندر مودی نئی دلی کے لئے روانہ۔ لوک سبھا چناؤ کے پیش نظر چناؤ عملے کی تربیت کا سلسلہ جاری۔ پولیس کنٹرول روم کشمیر میں دن رات کام کرنے والی الیکشن ہیلپ لائن قائم۔ زبرون پہاڑی کے دامن میں واقع باغ گل لالا آج سے عوام کے لئے کھولا گیا۔ اور روس میں ایک کنسرٹ ہال کے اندر مسلح افراد کی فائرنگ، 80 افراد ہلاک، 150 زخمی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔